ओम शांति। आपका इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और मंच पर आसीन आदरणीय दीदी जी से तो आप सब भली भांति परिचित हैं ही। और आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है गीता के सर्मोनाइजर का, उसके ऊपर आदरणीय दीदी जी हमें बहुत सुंदर सरल शब्दों में प्रकाश डालेंगे। दीदी जी की जो विशेषताएं हैं वो सब तो आपने सुबह सुनी ही हैं। सार रूप में दीदी के लिए जो हमने बचपन से अनुभव किया है वो इतना ही कह सकते हैं कि आप वो परमात्म शक्ति हैं, आप वो परमात्म शक्ति हैं जो हर हार को जीत में बदल देती हैं, बेकरार अशकों को गीत में बदल देती हैं। आपके पास आकर गमगीन कोई रहता नहीं, आपके पास आकर गमगीन कोई रहता नहीं, क्योंकि आप वो शिव शक्ति हैं जो हजार नफरतों को प्रीत में बदल देती हैं, हजार नफरतों को प्रीत में बदल देती हैं। ऐसी आदरणीय दीदी जी से अनुरोध है कि वो आज के विषय पर हम सभी का राह प्रदर्शक करें। आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। आज के इस सत्र में श्रीमद् भगवद् गीता का सर्मनाइजर कौन है, बहुत बड़ी पहेली है कि किसने ये गीता का ज्ञान हम सबके सामने सन्मुख में उच्चारण किया। और गीता के जो डीप सीक्रेट्स है, कई ऐसे गुह्य रहस्य भरी बातें हैं जिसको समझने से कई गुत्थियां सुलझने लगती है। श्रीमद् भगवद् गीता को महान ते महान धर्मशास्त्र माना गया है। संसार के सभी धर्म शास्त्र की मां बताई गई है, गीता माता कहा उसको, क्योंकि उसमें वो अमृत है जो हम आत्माओं में श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन करती है। जिस तरह एक मां अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार सींचने का कार्य करती है, ठीक इसी प्रकार गीता भी माता है। दुनिया के कोई भी धर्म शास्त्र को मां का लेबल नहीं दिया गया है सिवाय गीता के। इसको कहा ही गया है कि भगवान का गाया हुआ वो मधुर गीत है, उस गीत के कारण उसको गीता कहा। उसमें वो अमृत तत्व है कि जिससे मनुष्य आत्मा अमरत्व को प्राप्त कर सकती है। दुनिया के अंदर जितनी भी महान हस्तियां हो गई उनकी महानता का आधार जब उन्होंने गीता का अध्ययन किया, चाहे वो महात्मा गांधी हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, स्वामी विवेकानंद हो, या दुनिया भर के अंदर कुछ विशेष ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने भी गीता का अध्ययन किया, तब उस महानता के शिखर पर पहुंचे हैं। यानी गीता में वो शक्ति है जो मनुष्य आत्मा जितना ऊंचा उठना चाहे जीवन के अंदर उठ सकता है। वो रहस्यमय बातें हैं कि जिसको समझने के लिए भगवान दिव्य बुद्धि का वरदान देता है। और इसीलिए शायद आज दुनिया में जितनी भाषाओं में श्रीमद् भगवद् गीता को ट्रांसलेट किया गया है उतना और किसी पुस्तक को ट्रांसलेशन नहीं मिला है। महात्मा गांधी हमेशा ये कहते कि जब भी मेरे सामने कोई समस्या आती और मैं उलझ जाता, मैं श्रीमद् भगवद् गीता को लेकर के बैठता, कोई भी पन्ना खोलकर उसको पढ़ना आरंभ करता और मुझे मेरी समस्या का समाधान प्राप्त होने लगता। वो गीता ज्ञान इतना श्रेष्ठ कि जिसमें सभी वेदों का सार समाया हुआ है। अलग अलग वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सभी वेदों का सार श्रीमद् भगवद् गीता है। और सारी गीता के अंदर कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये मानवता का शास्त्र है, ये हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं है, लेकिन संपूर्ण मानव जाति का ये शास्त्र है जो हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाता है। जीवन के अंदर जो चुनौतियां आती है, हर चुनौती को पार करने की एक विधि बताई है। इसीलिए श्रीमद् भगवद् गीता में ऐसा विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान है जिस कारण ये अतुलनीय हो जाती है। इसकी खूबी यह है कि इसमें जो वर्णवित ज्ञान है वो सर्व मानव प्राणियों पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है। स्वयं भगवान के महावाक्य है और इसीलिए शिरोमणि कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ। इसके अंतर्गत सभी धर्म की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। ये गीता जो भगवान ने उच्चारी अर्जुन को सुनाई वो हम तक कैसे पहुंची? उसकी थोड़ी सी अगर भूमिका को देखा जाए तो हम सभी जानते हैं, इस बात को अच्छी तरह से मानते हैं कि वेद व्यास जी महान ऋषि थे और वेद व्यास जी जब समाधि अवस्था में बैठते थे उस समाधि अवस्था में उन्हें ज्ञान प्राप्त होता था और जब यह ज्ञान प्राप्त होने लगता था तो पहले दिन जो ज्ञान प्राप्त हुआ उन्हें उस समाधि अवस्था से नीचे उतरने के बाद उन्होंने सोचा मैं इसको लिपिबद्ध कर दूं ताकि मनुष्य तक उसको पहुंचा सकूं। लेकिन समाधि अवस्था ऐसी होती है कि जैसे ही उस समाधि अवस्था से बाहर आते हैं तो कुछ स्मृति विस्मृति हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि पहले दिन का ज्ञान हम तक नहीं पहुंचा क्योंकि वेद व्यास जी को ही विस्मृत हो गया। तब कहा जाता है कि दूसरे दिन उन्होंने भगवान से विनती किया कि हे प्रभु, आप मुझे इतना उत्तम ज्ञान दे रहे हो लेकिन अगर मैं उसको लिपिबद्ध नहीं कर पाया तो मनुष्य तक पहुंचेगा कैसे? तो कम से कम मुझे कोई लिखने वाला चाहिए। तब उनको लिखने के लिए मिलता है गणेश जी। गणेश जी को कहा जाता है बुद्धि का देवता, कि जिसको लिपिबद्ध करने के लिए कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बुद्धि के देवता ने उसको लिपिबद्ध किया है। यानी समाधि अवस्था में जब वेद व्यास जी थे, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो कितनी ऊंची कॉन्शियसनेस थी, और उस श्रेष्ठते श्रेष्ठ कॉन्शियसनेस में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको लिपिबद्ध करने के लिए बुद्धि के देवता गणेश जी, जिसकी भी कॉन्शियसनेस कितनी श्रेष्ठ होगी, कितनी हाई कॉन्शियसनेस लेवल होगा। अब उस कॉन्शियसनेस में जो दिया हुआ ज्ञान है, आज का मनुष्य जो ग्रॉस लेवल पर है, वो उस कॉन्शियसनेस की बात को कितना समझ पाता है। इसीलिए कहा जाता है सीक्रेट्स ऑफ गीता। और इस सेशन में अनलॉकिंग द मिस्ट्रीज ऑफ गीता, कि जो वेद व्यास जी ने समाधि अवस्था में प्राप्त किया, जिसको गणेश जी ने लिखा, और वेद व्यास जी जब गणेश जी का आवाहन करते हैं, तो महाभारत के आदि पर्व के 77वां श्लोक है कि जहां वेद व्यास जी गणेश जी का आवाहन करते हैं, और आवाहन करते हुए उसको कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कही है कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बनो, यह ग्रंथ मैं मेरे मन की अति उच्च अवस्था अर्थात समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूं, जो कि मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। भावार्थ कि जैसे आज एक बच्चे को हमें एक मॉरल सिखाना होता है कि बेटा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मॉरल ये है, ज्ञान ये है, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर सीधा उपदेश देंगे तो शायद उसके समझ में वो बात, वो उपदेश कम आएगा। लेकिन उसी बात को, उसी मॉरल को एक कहानी का रूप दे करके, जिसमें एक सच का पात्र हो, एक झूठ का पात्र हो, और फिर कैसे सच की विजयी होती है, झूठ की हार होती है, ये कहानी जब सुनाते हैं तो शायद वो संदेश उसको समझ में आता है। तो जो कहानी है, ये कहानी हमारी अपनी मन की कल्पनाओं का विस्तार है। लेकिन जो ज्ञान है, तथ्य है, वो सही है, वो मन की कल्पनाएं नहीं है। लेकिन जो कहानी का फॉर्मेट बनाया, वो फॉर्मेट हमारी अपनी मन की कल्पनाओं का विस्तार है, लेकिन तथ्य ये ज्ञान है। ठीक इसी तरह वेद व्यास जी को जो ज्ञान समाधि अवस्था में प्राप्त हो रहा था, उस ज्ञान को प्रकट करने का जो फॉर्मेट उन्होंने अपनाया, महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा, ये उसकी मन की कल्पनाओं का विस्तार है। वेद व्यास जी स्वयं महान ते महान ऋषि महाभारत के आदि पर्व के 77वें श्लोक में खुद एडमिट कर रहे हैं। इसीलिए कई बार कई लोग हमसे पूछते हैं, आप क्या समझते हैं कि महाभारत हुआ ही नहीं? हम कहते क्यों नहीं हुआ, हो रहा है ना, अब क्या हो रहा है। और ये चीज उन्होंने उस समाधि अवस्था में जो देखा था, उसका बहुखूबी चित्रण किया हुआ है। वर्तमान समाज को उन्होंने बहुत सुंदर रीति से चित्रण करके रखा हुआ है। तो क्यों नहीं हो रहा है, महाभारत तो चल ही रहा है, घर 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 के अंदर महाभारत चल रहा है। तो जो ज्ञान है वो उनको समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ, लेकिन प्रेजेंटेशन का जो तरीका था वो महाभारत की कथा। कथा का मतलब है एक कहानी जिसमें मनुष्य को जीवन जीने की कला के लिए बहुत उपयोगी है। एक एक बात इतनी सत्य है और प्रैक्टिकल है जो आज के जीवन में हर प्रश्न का, हर समस्या का समाधान देता है। श्रीमद् भगवद् गीता इसीलिए तो महान है। क्यों महान है? क्योंकि उसमें हर लेवल का समाधान है। फ्रॉम एन इंडिविजुअल लेवल टू अ वर्ल्ड लेवल, या जिसको हम कहे मैनेजमेंट लैंग्वेज में फ्रॉम अ माइक्रो लेवल टू अ मैक्रो लेवल, हर लेवल का इसमें समाधान मिलता है। ये एक अर्जुन की मनोदशा का ही खाली समाधान नहीं है। आज हर मनुष्य अर्जुन की तरह है कि हर व्यक्ति को एक ऐसे जीवन में चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरना पड़ता है कि जब उसको जीवन असार लगने लगता है, उसके पास कुछ नहीं बचता है। उसका विश्वास, मूल्य, धैर्य, दया, सबकी हदें टूटने लगती है। इन्हीं में से कुछ लोग इन चुनौतियों को पार करके अपने जीवन को सफल बना लेते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति उसी संघर्ष में अपने जीवन को नष्ट कर डालते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो अर्जुन की जो मनस्थिति थी वो आज के इंसान की मनस्थिति भी है। सोचने की बात है, अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया तो वह इतना नर्वस हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, निराश हो गया, हिम्मतहीन हो गया कि उसने शस्त्र छोड़ दिए और बार बार भगवान से विनती करने लगा, मुझे ये युद्ध नहीं करना है। उस समय क्या कहेंगे? उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी, उसके बाद भी ऐसी डिप्रेशन वाली स्थिति, तो क्या भगवान पर उसको विश्वास नहीं था? भगवान जब साथ में हो तो हिम्मत और बढ़ जानी चाहिए थी उसकी। फिर ऐसी मनोदशा क्यों? और उस समय भगवान ने उस मनोदशा से बाहर निकालने के लिए उसको कौन सा ज्ञान दिया? गीता का आध्यात्मिक ज्ञान दिया। और धीरे धीरे उसकी मनस्थिति बदलने लगी और युद्ध के लिए तैयार हो गया। ठीक इसी प्रकार जीवन भी एक संघर्ष है, जहां हर वक्त व्यक्ति को लड़ना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है। जीवन के कई संघर्षों को तो पार कर जाते हैं, लेकिन जीवन के कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति उदास हो जाता, निराश हो जाता, हिम्मतहीन हो जाता, नर्वस हो जाता, डिप्रेस्ड हो जाता। और ऐसे समय में ये नहीं कि उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, ये नहीं कि उसको भगवान पर विश्वास नहीं है, लेकिन कभी कभी वो प्रार्थना में भगवान से यही बात कहता है कि हे प्रभु, ये संघर्ष कब तक, ये युद्ध कब तक? और ऐसे समय में आध्यात्मिक ज्ञान ही हमें पुनः मोटिवेट करता है और जीवन जीने की कला सिखाता है और जो हमारी हदें टूटने लगी है उन हदों को पुनः बांधता है और विजयी बनाता है, सफल बना देता है। खाली अर्जुन की मनस्थिति का समाधान नहीं था, लेकिन यहां युद्ध था पांडव और कौरव के बीच में, यानी एक परिवार के बीच में। आज दुनिया के अंदर परिवारों में झगड़ा किस पर होता है? जमीन और जायदाद को लेकर के ही तो झगड़ा होता है, होता है ना? आपके पास तो रोज केस आते हैं, जमीन और जायदाद को लेकर के ही सारे झगड़े होते हैं। महाभारत काल में भी जब दुर्योधन ने कह दिया कि 5 गांव तो क्या, 1 सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देना चाहता हूं, भावार्थ ये कि वो अपने हृदय में, मन में उनको स्थान नहीं देना चाहता था, न उनको सुख से रहने देना चाहता था, और अभिमान इतना कि चाहे कुल का नाश हो जाए परंतु घृणा, द्वेष, वैर, क्रोध, अन्याय, प्रतिशोध की भावना को नहीं छोड़ना है। आज घर घर की ये कहानी है, उसका समाधान भी गीता है। खाली अर्जुन की मनस्थिति या परिवार के समाधान की बात नहीं है, लेकिन आज समाज के अंदर, हर समाज की ये कहानी है। समाज के अंदर भी शकुनी जैसे पात्र है। महाभारत में तो एक ही शकुनी दिखाया, आज की दुनिया में कितने शकुनी है, क्या कहेंगे? कितने शकुनी है? हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा, घर घर में आग लगा रहा होगा। तो आज भी समाज के अंदर शकुनी जैसे पात्र है, और समाज जो विकर्म तथा कुकर्मों के प्रति अंधा, जो धर्म अधर्म, कर्तव्य कर्तव्य, भलाई बुराई, न्याय अन्याय के बीच में परखने वाले चक्षु नहीं है, उस ज्ञान चक्षु से वंचित ऐसा समाज बन गया है, उस समाज के लिए भी समाधान श्रीमद् भगवद गीता है। उसी के साथ खाली समाज की बात नहीं, देश की बात है। आज देश में भी प्रॉब्लम्स कितने चल रहे हैं, राष्ट्र के अंदर प्रॉब्लम कौन से हैं? अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है, किस बात का प्रॉब्लम चल रहा है राष्ट्र के अंदर? किसका प्रॉब्लम चल रहा है? कुर्सी का ही तो खेल होता है, कुर्सी का ही खेल होता है ना हर राष्ट्र के अंदर। तो महाभारत के अंदर भी बहुत सुंदर वेद व्यास की कल्पनाओं को तो देखो, कितना सुंदर चित्रण किया है उसने। धृत राष्ट्र, जब राष्ट्र को धृत भावना हड़प कर बैठता है और पाशवी बल से अपना अधिकार जमाए हुए, सत्य की दृष्टि से अंधा, और उसमें भी जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है, वो बहुत ही भयानक होता है। खाली भारत की ही बात नहीं है, लेकिन हर राष्ट्र को आज कुर्सी का ही खेल है। उसी कुर्सी को हड़पने के लिए, उसी कुर्सी पर अपना हक जमाने के लिए ही तो सारी समस्याएं खड़ी होती है, उसका समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता है। और वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो आज संसार एक विशेष संकटमय स्थिति से गुजर रहा है, तो स्वयं भगवान इस धरा पर आकर इस इतिहास को एक नया मोड़ देते हैं, मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ पढ़ाते हैं और उसके मन को अनेक विषय तथा व्यक्तियों के मोह से निकालकर योग्युक्त बनाते हैं। इसलिए कहा है, एक व्यक्ति से लेकर विश्व तक सभी स्तरों का समाधान श्रीमद् भगवद गीता। इसीलिए गीता महान है कि गीता में हर स्तर का समाधान मिल जाता है, बस कोई भी पन्ना खोल करके आरंभ करो पढ़ना और मिल जाएगा उत्तर, लेकिन उसकी गहराई को समझना पड़ता है। ये कहानी जो वेद व्यास की मन की कल्पनाओं का विस्तार है, मुझे याद आता है कि जैसे नॉस्ट्रोडेमस के लिए कहा जाता है कि उसके सामने गोला रहता था जिसमें वो भविष्य को देखता था और लिखता था। नॉस्ट्रोडेमस ने भी कई भविष्यवाणियां की, लेकिन जब घटना हो जाती उसके बाद सभी कहते हैं नॉस्ट्रोडेमस ने लिखा था, पहले नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इतना पोएटिक लैंग्वेज में लिखा है कि उसको समझना आम मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो जिस तरह उसने गोले में भविष्य को देखा, वेद व्यास जी इतने महान ऋषि थे, उसने समाधि अवस्था में कली काल को देखा था और उसके हिसाब से उसने सारी महाभारत की रचना की। ये महाभारत जो है आज चल रहा है, हर देश में चल रहा है, हर घर में चल रहा है, जो उन्होंने देखा था समाधि अवस्था में। और साथ साथ खाली देख करके लिखा नहीं, उसका समाधान भी दिया हुआ है। इसीलिए नॉस्ट्रोडेमस से भी वेद व्यास जी महान हो गए, क्योंकि उसने खाली सिचुएशन का वर्णन नहीं किया है, लेकिन उस सिचुएशन को हैंडल करने का जो सॉल्यूशन है वो भी बताया हुआ है, वो मिस्ट्री है। खाली गलती इतनी ही हो गई कि जैसे उसने पोएटिक लैंग्वेज में लिखा था जिस कारण आम मनुष्य समझ नहीं पाता है, ऐसे वेद व्यास जी ने भी एक ही गलती किया कि उसको संस्कृत में लिखा दिया। और संस्कृत लैंग्वेज ऐसी है कि एक एक शब्द के दस दस अर्थ निकलते हैं और इसीलिए मनुष्य भी उसको समझ नहीं पाता है, आम मनुष्य के समझने की बात नहीं है। और इसीलिए जब उसको समझने का प्रयत्न करता है तो और भी कई बार उलझ जाता है उसमें। लेकिन जब परमात्म शक्ति आते हैं तो हर बात का रहस्य स्पष्ट होता है कि वो क्या कहना चाहते थे। वेद व्यास जी की मन की कल्पनाओं को देखते हैं अभी किस तरह से उन्होंने ये लिखाया। महाभारत की कथा एक परिवार की कथा है, कुरु परिवार, जहां पांडव और कौरव दो है भाई भाई। कुरु का मतलब है करना। पांडव पांच थे, पांडव माना जिसकी भगवान से प्रीत बुद्धि थी, जो भगवान से प्यार करना जानते थे, और कौरव माना जो भगवान से विपरीत थे, अपवित्र अधर्म करने वाले, जो सौ थे। कहा जाता कि दोनों जब भगवान से मदद मांगने के लिए गए, अर्जुन पैरों के पास खड़ा हो गया और दुर्योधन सिर के पास जाकर खड़ा हुआ। कितना सुंदर चित्रण है। और भगवान ने जैसे आंख खोली सामने अर्जुन को देखा, दुर्योधन ने कहा नहीं पहले मैं आया हूं, मुझे मांगने के लिए कहा जाए। अर्जुन ने कहा तू मांग ले। भगवान ने कहा ठीक है, मेरे पास दो चीज है, एक तरफ मेरी अक्षौणी सेना है, दूसरी ओर मैं हूं, क्या चाहिए? दुर्योधन कुछ बोले उसके पहले ही भगवान ने एक लाइन जोड़ दिया। और क्या जोड़ा? कि जिस तरफ मैं रहूंगा, मैं सारथी बनकर रथ चलाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब दुर्योधन ने सोचा भगवान को मांगने का फायदा ही क्या फिर, तो अगर उसको युद्ध करना ही नहीं है, शस्त्र उठाना ही नहीं है, तो मांग कर फायदा क्या। तब उन्होंने कहा कि मुझे अक्षौणी की सेना चाहिए। और अर्जुन ने कहा भगवान आप हो मेरे लिए सब कुछ है। भावार्थ ये कि दुर्योधन जो सिर के पास बैठा था अहंकार का प्रतीक, जब व्यक्ति अभिमान में होता है तब भगवान की शक्ति का अंदाजा नहीं होता है उसको। पैरों के पास खड़ा अर्जुन नम्रता का प्रतीक, धर्म का प्रतीक, प्रीत बुद्धि का प्रतीक, कि जब व्यक्ति जीवन के अंदर निर्माण होकर के चलता है तो भगवान का साथ भी उसी को प्राप्त होता है। अहंकार को कभी भगवान का साथ नसीब नहीं है और इसीलिए वो भगवान की शक्ति को पहचानते नहीं। आज परसेंटेज कितने पर निकलता है? परसेंटेज कितने पर निकलता है? 100 पर निकलता है ना? तो 5 पांडव और 100 कौरव, ये परसेंटेज है। क्या सारी दुनिया को अगर लिया जाए, सारी दुनिया, सारा विश्व एक परिवार है और इस परिवार में भी दो है, एक पांडव है, कौरव है। सारी दुनिया को अगर 100% के रूप में लिया जाए तो उसमें पांडव कितने होंगे? ओनली 5%। भगवान को सच्चे दिल से प्यार करने वाले कितने हैं? ओनली 5%। जो भगवान की शक्ति को जानकर पहचान कर उसके साथ हो जाते हैं। उस 5 पांडव में भी, पांडव माना जो धर्म पक्ष का वाचक, दैवी संप्रदाय, दैवी प्रकृति वाले, और उसमें भी सबसे पहला है युधिष्ठिर। युद्ध जैसी परिस्थिति में भी जो स्थिर बुद्धि रहता है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, सत्यता को जीवन में अपनाता है, ऐसे कितने परसेंटेज होंगे सारी दुनिया के अंदर? ओनली 1%। दूसरा नंबर था भीम का। भीम माना शक्तिशाली आत्मा, स्ट्रांग विल पावर जिसके पास है उसको कहते हैं भीम। आज की दुनिया में जहां कॉन्फिडेंस भी खत्म होने लगा है तो स्ट्रांग विल पावर वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। तीसरा नंबर है अर्जुन। अर्जुन माना अर्जन करने वाला, भगवान ने जो कहा अर्जन किया, धारण किया, प्रैक्टिकल जीवन में अपनाया। आज अर्जन करना, अच्छी बातों को जीवन में धारण करने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। चौथा था नकुल। नकुल यानी जो नियमों पर चलने वाला, सिद्धांतों पर चलने वाला, प्रिंसिपल्स पर चलने वाला। आज दुनिया में प्रिंसिपल्स को, वैल्यूज को लेकर चलने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। और पांचवा था सहदेव, कि हर अच्छे कार्य में अपना सहयोग देने वाला, सहदेव। तो आज की दुनिया में सहयोग देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन सहयोग देने के पीछे भाव क्या होता है? नाम मान शान। मेरा नाम होना चाहिए, मेरी नेम प्लेट लगानी चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, है ना? लेकिन बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाले कितने परसेंटेज होंगे? ओनली 1%। ये थे 5 पांडव। अभी थोड़ा अपने आप को देखें, हम कौन है? आज की सभा में पांडव है वही यहां बैठेंगे, जो पांडव नहीं होंगे ना वो यहां आने के बाद भी यहां नहीं बैठेंगे, वो बाहर ही घूम रहे होंगे। साइट सीइंग में गए होंगे। पांडव ही बैठ सकते हैं, ज्ञान तो पांडवों के लिए ही था, अर्जुन के लिए ही था, है ना? तो पांडव तो है, लेकिन अपने आप को कौन युधिष्ठिर समझता है? जरा खड़ा करेंगे हाथ जो समझते हम युधिष्ठिर है, है? कोई नहीं है। अच्छा, जो समझते भीम है, स्ट्रांग विल पावर, वेरी गुड, एक दो है बस। अच्छा, धीरे धीरे खड़े कर रहे हैं। अच्छा, जो समझते अर्जुन है, अर्जुन है, अच्छा अर्जुन काफी बैठे हैं। अच्छा, जो समझते नकुल है, प्रिंसिपल्स पर जीने वाले हैं, वेरी गुड। और जो समझते सहदेव है हम, हाँ वो ज्यादा होंगे। लेकिन कुछ लोगों ने किसी में हाथ खड़ा नहीं किया, हाँ? लेकिन आज जो मैं यहां से आपको देख रही हूं कि सभी पांडव बैठे हैं, और सभी पांडवों में भी अर्जुन बैठे हैं, इसीलिए क्योंकि ज्ञान तो अर्जुन के लिए ही होता है, तो आप सभी अर्जन करने के लिए बैठे हैं, तो ऐसे अर्जुनों को मुबारक हो, है ना? धन्य हो आप लोगों को, शाबाश हो कि कम से कम कौरव में तो नहीं है, पांडव तो है, और पांडव में भी अर्जुन तो बन गए हैं आप, है ना? तो इसीलिए मुबारक हो ऐसे पांडवों को और अर्जुनों को। दूसरी ओर अधर्म पक्ष के वाचक में कौरव, धृतराष्ट्र जो राज सत्ता बाहुबल और भूमि के अभिमान से युक्त अंधा था, और गांधारी जो देखते हुए देखना नहीं चाहती थी, आंखों पर पट्टी बांध ली उसने। जब मैं ये बात पढ़ रही थी तो वेद व्यास जी की कल्पनाओं का विस्तार मुझे इतना सुंदर लगा कि सोचने के लिए मजबूर हो गई कि आज अगर किसी के पति की आंखें चली जाए तो उसकी पत्नी को उसका सहारा बनना चाहिए या खुद भी अंधा हो जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ, सहारा बनना चाहिए ना। तो ये गांधारी कैसी जो आंखों पर पट्टी बांध लिया, क्योंकि सचमुच वेद व्यास जी की मन की कल्पनाओं का विस्तार देखो कि सचमुच आज दुनिया के अंदर पति अगर कोई गलत काम करता है तो पत्नी उसको साथ देने लगती है, एक शब्द भी कहती नहीं है कि ये गलत है, इस राह पर नहीं चलना है, वो भी देखते हुए नहीं देखना चाहती है, और गांधारी बन जाती है उस वक्त, है ना? आंखों पर पट्टी बांध लेती है। ये आज की दुनिया का सही में चित्रण है, सही में स्वरूप है। और फिर मैं 100 कौरवों का नामों की लिस्ट देख रही थी, एक बार मेरे हाथ में 100 कौरवों के नामों की लिस्ट आ गई, बड़ा आश्चर्य हुआ, एक एक का नाम पढ़ पढ़ करके, आप मानेंगे नहीं, मेजॉरिटी का नाम दू से आरंभ था, दुर्योधन, जिसने धन का दुरुपयोग किया। आज ऐसे बच्चे समाज में है, देखो वेद व्यास जी की कल्पना का विस्तार, दुशासन, ऐसे समाज के अंदर कैरेक्टर्स है दुशासन करने वाले, दुशह, दुशल, दुर्मुख, दुर्बुद्धि, दुर्विमोचन, है ना? एक एक इंद्रियों का वर्णन किया हुआ कि हर बात, हर इंद्रिया दुष्टता का भाव लिए हुए, दु यानी दुष्टता, तो दुख देना जानता है दूसरों को, दुष्टता का भाव है। तो आज समाज के अंदर ऐसे कौरव है या नहीं है? है, बहुत है ना? वेद व्यास जी की मन की कल्पनाओं का विस्तार तो देखो कितना सुंदर है ना ऐसा? तो और लास्ट में एक बहन जो थी वो भी दुशीला, दुशीला, शील यानी चरित्र, दुशीला यानी जो चरित्रहीन थी। और खास करके जब मैं बड़े शहरों में जाती हूं और जब होर्डिंग्स पर देखती हूं तो मुझे कई दुशीलाएं नजर आती है, और शायद आप लोगों को भी वो दुशीलाएं नजर आती होंगी। कितनी दुशीलाएं हैं आज समाज के अंदर, है कि नहीं है? तो इसलिए कहा कि वेद व्यास जी की मन की कल्पनाओं का विस्तार देखो कितना सुंदर है। जब ये बात मैं पढ़ रही थी, मेरे मन में एक विचार आया कि कलयुग के अंदर भी माँ बाप अपने बच्चों के इतने सुंदर सुंदर चुन चुन के नाम रखते हैं। महाभारत में सचमुच गांधारी और धृतराष्ट्र ने एक एक के इतने खराब नाम चुन चुन के रखे होंगे, ऐसे कैसे माँ बाप होंगे जैसे? लेकिन ये तो वेद व्यास जी की मन की कल्पनाओं का विस्तार था ना, जो आज कैरेक्टर वाइज वो नाम चुने गए हैं। नाम तो दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर लोगों के रखे जाते हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकल चरित्र देखा जाए तो कौरों को भी कभी कभी मात देने वाला होता है, ऐसा है ना? आप लोगों के सामने तो केसेस आते हैं, अब जानते हैं कि कैसे कौरों को भी मात देने वाला होता है ना? तो इसीलिए कहा कि देखिए नाम भी कितना सुंदर वेद व्यास जी ने जो देखा दृश्य के आने वाले समय में किस प्रकार का समाज होगा, किस प्रकार का देश होगा और किस प्रकार के कैरेक्टर्स उसमें होंगे, और उसका वर्णन करने के लिए नाम भी अप्रोप्रिएट चुना गया था, है ना? तो 5 पांडव और 100 कौरव ये आज की दुनिया है। और गीता का जन्म कहां हुआ, अब उस कहानी पर आगे बढ़ते हैं। तो कहते कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई, शंखनाद गूंज उठे, सभी ने अपने अपने शंख बजाना शुरू कर दिया, प्रेक्षपास्त्र चलने शुरू होने वाले थे, शंखनाद गूंज उठा, युद्ध का कोलाहल था और संघर्ष के कारण सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा था। ऐसे समय पर गीता ज्ञान दिया गया, जिस कारण गीता को संघर्ष का शास्त्र भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र जहां पर कितनी सेना थी, तो 18 अक्षौणी सेना थी, 11 अक्षौणी कौरवों के तरफ और 7 अक्षौणी पांडवों के तरफ थी। 18 अक्षौणी और 1 अक्षौणी माना कितना पता है आपको? 47 लाख समथिंग है, फिगर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 47 लाख समथिंग। और उसमें कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने पैदल सैनिक, ये सब मिलाकर के 47 लाख 600 समथिंग है जो पूरा करेक्ट फिगर है, वो इतना ध्यान में नहीं रहा, 47 लाख तो मुझे याद है। अब एक अक्षौणी माना 47 लाख हो तो 18 अक्षौणी माना कितने करोड़ हो जाना चाहिए। और कुरुक्षेत्र का अगर वो मैदान देखो ना, अभी लास्ट वीक मैं कुरुक्षेत्र में थी, तो कुरुक्षेत्र का वो मैदान अगर देखो तो इतना छोटा है जो इतने करोड़ वहां खड़े भी नहीं हो सकते, खड़े ही नहीं हो सकते, क्योंकि खाली 18 अक्षौणी सैनिक ही नहीं थे। लेकिन कहते थे कि जैसे ही सूर्यास्त हो जाता था तो युद्ध विराम हो जाता था, तो सभी अपने अपने शिविरों में जाते थे और रात में सभी मिलकर के जश्न करते थे, ऐसे शास्त्र में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इतने रहने की सुविधाएं होंगी, 18 अक्षौणी लोगों के रहने की सुविधाएं। मेरे को लगता है हरियाणा भी कम पड़ेगा, कुरुक्षेत्र तो छोड़ो, हरियाणा भी कम पड़ जाएगा। और इतना ही नहीं, लेकिन उनके खाना बनाने वाले कितने होंगे, हाँ भाई, 18 अक्षौणी लोगों का खाना बनाने वाले कितने होंगे? सोचने की बात है, इतने शिविर, उतने खाना बनाने वाले, तो शायद पूरी भारत की धरनी चाहिए उसके लिए, तो है ना। तो कुरुक्षेत्र नाम जो है, जैसे मैं इतिहास पढ़ रही थी कुरुक्षेत्र का, तो वहां ही एक भाई ने मुझे सुनाया कि 1974 तक कुरुक्षेत्र एक बहुत छोटा सा गांव था, तालुका भी नहीं था, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं था। 1974 में उसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, और तब तक वो नाम कुरुक्षेत्र नहीं था, थानेसर नाम था उसका, थानेसर। आज भी कुरुक्षेत्र थानेसर जिले में ही था, लेकिन अभी अलग किया गया है थानेसर और कुरुक्षेत्र को। भावार्थ ये कि जिसका नाम ही थानेसर था, क्योंकि ये नाम पड़ा है वहां के शिव के मंदिर से, शिव का मंदिर है थानेश्वर, लेकिन थानेसर थानेसर करके वो गांव का नाम ही थानेसर हो गया था। और इसीलिए माना उसके पहले कुरुक्षेत्र नाम का कोई गांव ही नहीं था, ये संसार के मैप पर कुरुक्षेत्र नाम का कोई स्थान ही नहीं था, उस स्थान का नाम भी थानेसर था। और वो स्थान जहां दिखाते हैं कि युद्ध हुआ, वो इतना छोटा है कि 18 अक्षौणी सैनिक वहां खड़े ही कैसे हुए मालूम नहीं। और मेरे विचार चलते रहे कि जब मुझे ये बताया गया कि अर्जुन ने कहा भगवान से कि भगवान मेरा रथ बीच में ले जाओ, दोनों सेनाओं के बीच में, मैं दोनों सेनाओं को अच्छी तरह से देखना चाहता, और देखने के बाद उसका हृदय विदीर्ण हो गया और उसने शस्त्र छोड़ दिया और भगवान को मना कर दिया मुझे युद्ध नहीं करना है, और तब जाकर के भगवान ने उसको 18 अध्याय का ज्ञान सुनाना आरंभ किया, 700 श्लोक सुनाए गए उसको। अब 700 श्लोक आप पढ़ के देखो कितना घंटा लगता है, हाँ? 700 श्लोक को अगर लगातार भी आप पढ़ो तो भी कितना घंटा लगता है, हैं? कितना दिन लगता है? 7-8 दिन लगेगा, हम लोगों को 7-8 दिन लगेगा, लेकिन कहा जाता है कि उस समय भगवान ने 3 घंटे के अंदर 700 श्लोक उसको सुनाए, 3 घंटे। तो मैं सोच में पड़ गई कि क्या दुर्योधन जैसा व्यक्ति जो युद्ध के लिए इतना उत्तेजित था 3 घंटा पेशेंसली बैठा होगा, हाँ? शंख बजा दिया उसके बाद वो 3 घंटा साइलेंट रहा होगा क्या? व्हाट डू यू इमेजिन, आपका विवेक यूज करो कि वो शांति से बैठा रहा होगा, कुछ नहीं, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया होगा 3 घंटे तक, कोई रिएक्शन नहीं, ऐसा हो सकता है? असंभव है ना, असंभव। दूसरी बात कि जब गीता को कहा ही गया संघर्ष का शास्त्र है, यानी जो मनुष्य के मन के संघर्ष की बात है, अब सारा 3 घंटे का ज्ञान सुनाया और उसमें उसको विश्व रूप दर्शन कराया, परमात्मा ने अपना वास्तविक परिचय दिया उसको, और अपना दर्शन कराने के बाद भी जब उसको महसूस हुआ कि ये परमात्मा शक्ति है, क्या उसके बाद भी अर्जुन ने अपना रथ चलाने दिया होगा? कैसा व्यक्ति है, परमात्मा शक्ति से रथ चलवाए रियलाइजेशन के बाद? चलो पहले तो अज्ञानता में उसने चलवाया, कोई अर्जा नहीं, लेकिन रियलाइजेशन के बाद भी वो रथ चलवाएं तो उसको क्या कहेंगे? दूसरी ओर भगवान ने कहा मेरी अक्षौणी सेना कौरवों ने ले लिया, माना उन दुर्योधन ने कहा मुझे अक्षौणी सैनिक चाहिए, अच्छा सेना सारी ले लिया, भगवान अगर सामने खड़ा है तो वो सैनिक किसको वफादार होंगे, अपने मालिक को या दूसरे को? किसको वफादार होंगे सैनिक? किसको वफादार होते हैं? भले ने भगवान ने दे दिया हो तो भी उसको विश्वास तो होगा ना, ये सैनिक मेरे ही वफादार है। और कहा जाता था कि प्रतिदिन भीष्म पितामह अकेले सिंगल हैंडेड 10,000 सैनिकों को मार देता था। उस हिसाब से भी देखा जाए तो कितने सैनिक, अगर प्रतिदिन वो अकेला व्यक्ति 10,000 सैनिक को मार देता था तो बाकी जो लोग मारते थे वो कितना होगा? और वो कुरुक्षेत्र का मैदान तो इतना छोटा सा है, क्या वहां ये युद्ध संभव होगा? तो क्या ये युद्ध हिंसक है या अहिंसक है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये युद्ध हिंसक है या हिंसक है? क्या भगवान आज महात्मा गांधी जैसे महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता दिलाई भारत को अहिंसा के बल पर उसी गीता के ज्ञान से, और स्वयं भगवान कहे कि हिंसा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है, आजादी नहीं मिल सकती ये कौरों से, तो उससे तो महात्मा गांधी अच्छे फिर तो? जिसने उसी गीता ज्ञान से अहिंसा के बल से स्वतंत्रता हासिल की, क्या कहेंगे आप लोगों का विवेक क्या कहता है? तो इसलिए क्या ये युद्ध कोई हिंसक युद्ध हो सकता है? क्या हिंसक युद्ध की बात नहीं है, क्योंकि कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा प्रदेश का एक मैदान नहीं है, कुरुक्षेत्र का मैदान तो अब भी है, परंतु एक कुरुक्षेत्र हमारे भीतर है, हमारी अंतर चेतना में है, जहां आसुरी और दैवी शक्तियां एक दूसरे के सामने तैनात है, और हमारी चेतना के भीतर ये युद्ध निरंतर चल रहा है। कुरुक्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र, हरेक व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र पर जब होता है तो युद्ध करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है, बताइए? करना पड़ता है ना? इसीलिए आज हर व्यक्ति जब एक युद्ध के मैदान में है, यही कर्म क्षेत्र। इसीलिए प्रथम श्लोक जो आता है कि धृतराष्ट्र जब संजय से पूछता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर क्या हो रहा है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र नहीं कहा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा। भावार्थ, भावार्थ ये कि जब कोई व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र पर होता है और वहां अगर धर्म का आचरण करना होता है, अच्छे वैल्यूज को लेकर उसको चलना होता है, तो कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर जिस तरह से युद्ध से वो गुजरता है, जिस तरह संघर्ष से उसको गुजरना पड़ता है, उसी के लिए अंधा व्यक्ति पूछ रहा है, यानी जो ज्ञान चक्षु से वंचित है, ऐसा व्यक्ति पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। किसको पूछता है? संजय को, जिसके पास ज्ञान के चक्षु थे। तो जो ज्ञान चक्षु विहीन होता है वो ज्ञान चक्षु वाले से पूछता है कि ऐसे समय पर क्या करना चाहिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, तुम मुझे उसका वर्णन करके बताओ, उसकी वास्तविकता क्या है, वो स्थिति क्या है, उसका वर्णन करके मुझे सुनाओ। क्योंकि संजय के पास तो तीसरा नेत्र था। तो जो ज्ञान चक्षु वाला होता है उसी को लोग जाकर के पूछते हैं कि मेरे सामने ऐसी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, है ना? हर बात का वो समाधान चाहता है। और इसीलिए पहले अध्याय में जो विषाद दिखाया है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान का दृश्य है, जिसमें मुख्य दो पात्र स्वयं भगवान और अर्जुन, और इनके साक्षी अक्षौणी सैनिक है, युद्ध में भाग लेने वाले दोनों सेनाओं के योद्धाओं के नाम की घोषणा के पश्चात अर्जुन का हृदय निराशा में डूबता जाता है। अब निराशा में डूबता क्यों गया, अर्जुन का मन जो है निराशा में क्यों चला गया? तो लोग यही अक्सर बताते हैं, भाई जब उसने देखा उसके गुरु है, चाचा है, सब सामने खड़े हैं, उनके सामने वो युद्ध कैसे करे, तो उसका मोह जागृत हो गया, इसीलिए उसने शस्त्र छोड़ दिए। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर मोह जागृत होना था ना, तो जब ये लोग अज्ञातवास में थे पांडव, और उस समय दुर्योधन ढूंढता फिरता था उन लोगों के कहां छिपे हैं पांडव अज्ञातवास में, क्योंकि अगर अज्ञातवास में वो पकड़े गए तो दोबारा वनवास हो जाएगा, तो इसलिए वो ढूंढ रहा था। और जैसे ही उसको थोड़ी भनक लगी कि विराट राजा के नगर में ये लोग छुपे हुए हैं, तो वो पूरी सेना लेकर चढ़ाई कर दिया विराट राजा के ऊपर। और उस समय कहा जाता है कि अर्जुन सिंगल हैंडेड उसने सारी सेना को परास्त कर दिया। उस समय भी द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, सारे थे। उस समय उसका मन निराशा में नहीं डूबा, तब तो सामना कर दिया। फिर महाभारत के समय निराशा में डूबने का कारण क्या था? जब ऑलरेडी उसने फेस कर दिया था, तो अब निराशा में डूबने की क्या वजह थी? उनकी वजह नहीं थी, क्योंकि उनको तो उसने फेस कर दिया था पहले ही। लेकिन जैसे अगर मैं उदाहरण दूं कि आज एक जज साहब है, जो जज की कुर्सी पर बैठ करके निरपेक्ष होकर के जो भी केस आता है उसके सामने उसकी सुनवाई होती है, सारा आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद, विटनेसेस की बातें सुनने के बाद, जो सबूत उसके पास होते हैं उसको देख करके अपना जजमेंट लिखता है, और निरपेक्ष होकर के जजमेंट लिखता है, जिसकी जो सजा होती है उस अनुसार उसको सजा दे देता है, है ना, यही करते। लेकिन मान लो एक दिन उसी कटघरे में उसी जज साहब का बेटा आ गया, और उसका गुनाह ऐसा है कि फांसी की सजा ही उसको मिलनी है, उस समय वो जज साहब की हालत क्या होगी? क्या होगी? वो सबको अपील करना शुरू करेगा या नहीं करेगा? कोई अपील करेगा ही नहीं, क्या करेगा? जयप्रकाश जी, क्या करेगा? अपील करेगा या नहीं करेगा? सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा, जाएगा ना, क्यों जाएगा? उस समय वो अपील करता है कि आजकल के नौजवान कभी कभी संघ दोष में आकर के राह भटक जाते हैं, उनको सुधरने का एक मौका देना चाहिए। लेकिन उसके पहले अनेक नौजवानों को उसने फांसी पर चढ़ा दिया, तब ये समझदारी नहीं आती है। लेकिन उस वक्त उसका अपना मोह जागृत होता है, तभी वो अपील करता है और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता है, और उनको सुधरने का एक मौका मिल जाए उसके लिए पूरा प्रयास करता है। ठीक इसी तरह अर्जुन की स्थिति थी। अब तक जो लड़ा वो अकेले हाथ लड़ा, किसी को घुमाने का सवाल ही नहीं था। महाभारत में भी भगवान ने 5 पांडवों की गारंटी लिया था, लेकिन उनके बच्चों की गारंटी भगवान ने नहीं लिया था। और इसीलिए अर्जुन जानता था कि अगर मैंने कौरवों को मारा, वो मेरे बच्चों को छोड़ेंगे नहीं, पोत्रों को छोड़ेंगे नहीं। तो पुत्र पौत्रों का मोह जागृत हो गया उस वक्त कि सारे लोगों को गंवाने के बाद अगर मुझे राज गद्दी भी मिल गई, क्या उस राज गद्दी पर बैठकर मुझे सुख की अनुभूति होगी कि हर वक्त मेरा मन खाएगा कि मैंने अपने बच्चों की बलि दिया है? इसलिए उसका हृदय विदीर्ण हो रहा था, निराशा में डूबता जा रहा था। अपने बच्चों को खोने का जब भय लगने लगता है तो हर मनुष्य क्या करता है, अपील करता है। मोह उन लोगों के लिए नहीं था, कौरवों के लिए उसके मन में कोई मोह नहीं था, न भीष्म पितामह, न द्रोणाचार्य, न कृपाचार्य, न उसके चाचा मामा काका जो भी थे, किसी के लिए मोह नहीं था। मोह जो सता रहा था उसको अपने पुत्र को खोने का मोह सता रहा था। इसलिए और जब व्यक्ति को अपनों को खोने का मोह सताने लगे ना, तो वह निराशा में डूबता जाता है। इसीलिए उसने संघर्ष करने के लिए मना कर दिया, ये युद्ध करने के लिए मना कर दिया। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखो कि जिस कर्म क्षेत्र पर कई बार वैल्यूज को अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कर लेते हैं, लेकिन अगर उस वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करने पर आपको अपने फैमिली मेंबर को खोना पड़े तो करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? ये युद्ध था, ये अहिंसक युद्ध था, कोई हिंसक युद्ध की बात ही नहीं है, है ना? वेद व्यास जी की मन की कल्पनाओं का विस्तार देखो, कितना सुंदर उसने चित्रण किया है। लेकिन ये जो बार बार गीता के अंदर कहा गया, उसमें भी मैं पढ़ रही थी कि गीता के अंदर 700 श्लोक है, उसमें से लगभग 100 श्लोक योग को लेकर के है, और हर अध्याय के अंत में योग शास्त्र कहा गया है, यानी योग शास्त्र है ये। और युद्ध के जो श्लोक है सिर्फ 15-20 श्लोक है, उससे अधिक नहीं है। सिर्फ 15-20 श्लोक युद्ध के श्लोक है, और उसमें भी अधिकतर श्लोक मनोयुद्ध की बात कर रहा है, विकारों के सामने युद्ध की बातें कर रहा है। भगवान अगर युद्ध कराए, फिजिकल हिंसक युद्ध कराए, वायलेंस कराए, तो फिर तो आज के टेररिस्ट अगर कर रहे तो उसमें क्या बुरी बात है ना? इसीलिए भगवान ने कहीं पर भी किसी को मारने की या हिंसक रीति से खत्म करने की बात ही नहीं किया है। लेकिन अगर उदाहरण दूं कि आज अगर आपका बच्चा गली में खेलने जाता है और वहां कोई बच्चा उसको हर बात में बुली करता है, चिढ़ाता है, उसको कोई ना कोई रूप से परेशान करता है, और वो बच्चा आपका रोता हुआ रोज आएगा और उस बच्चे की कंप्लेन करेगा कि वो मेरे को सताता है, परेशान करता है, मुझे बुली करता है, आप उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे, अरे मारो गोली उसको, तुम दूसरों के साथ नहीं खेल सकता है, उसी के साथ खेलना है तुझे, क्यों उसके साथ खेलने जाता है, मारो गोली उसको, दूसरे से अब मारो गोली उसका मतलब यह थोड़ी कि कोई बंदूक गोली उठाकर मारने की बात की आपने। मारो गोली का मतलब है उसको छोड़ो, उसके साथ नहीं खेलो, दूसरे के साथ खेलो तू। अगर तेरे में दम नहीं है उसका जवाब देने के लिए तो तू दूसरे के साथ खेल, उसके साथ खेलो ही नहीं, छोड़ो उसको, यही कहेंगे ना? ऐसे ही भगवान ने भी कहा मारो इनको, माना छोड़ो इनको, इट इज अ मेटाफोर, छोड़ो इनको। कोई बंदूक गोली उठा करके, शस्त्र उठा करके मारने की बात भगवान नहीं कह सकता है, छोड़ो उनको, अपना मोह त्याग दो उनमें से, है ना? ये भगवान ने मारो का प्रयोग इस भाव से किया हुआ है कि मारो गोली उसको, माना छोड़ो उसको, तुम उसके साथ खेलो ही नहीं, उसके साथ जाओ ही नहीं, उसके साथ तुम अपने कर्म क्षेत्र के अंदर इंटरैक्शन में आते ही क्यों हो, जो तुम्हें परेशानी उठानी पड़े। तो इसीलिए आज यहां अर्जुन इच्छा और संबंधों के जाल में फंसा हुआ एक व्यक्ति है, व्यक्ति की चेतना का प्रतीक है। हमारे मन में गुण और अवगुण के बीच में निरंतर युद्ध चलता रहता है, और जब मन थका हुआ होता है और आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता तो बुद्धि भी आसुरी वृत्तियों के आगे कभी कभी हारने लगती है। खास करके कोई लंबी बीमारी से जब गुजरता है तब वो क्या सोचता है, इससे तो मर जाना अच्छा है, अभी ये बीमारी के साथ संघर्ष करना नहीं चाहते हैं। या कोई ऐसा पारिवारिक कलह क्लेश चलता ही रहता है तो छोड़ो इसको, खत्म कर दो इसको, खत्म हो जाओ, यही सोचता है। असफलता पर असफलता बार बार होने लगती है या बहुत ज्यादा तनाव बढ़ जाता है तब व्यक्ति हारने वाली स्थिति में आ जाता है या ये महसूस करता है कि जीवन की बाजी अभी हार गया, अब ज्यादा संघर्ष नहीं हो सकता है। अर्जुन की मनस्थिति यही थी और इसीलिए थके हारे मन और निर्णय ले पाने में असमर्थ बुद्धि के कारण कभी कभी व्यक्ति डिप्रेशन में भी चला जाता है। मन को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक शक्ति का अभाव रहता है। आशा की किरण तभी दिखाई पड़ती है जब मार्ग निर्देशन के लिए स्वयं ईश्वरीय बौद्धिक सत्ता रास्ता दर्शाती है। मनुष्य के मन को भ्रमित करने वाले अनेक प्रश्न और उसका उत्तर मिलता है और ये सत्य ज्ञान तभी प्राप्त होता है कि तुम ये देह नहीं आत्मा हो, देह से आत्मा भिन्न सूक्ष्म शक्ति है। तभी उसको दूसरे अध्याय में भगवान ने आत्मज्ञान दिया। ये गीता का ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन के लिए इतना उपयोगी है। अभी कुछ समय पहले ही मैं किताब पढ़ रही थी कि क्रिश्चियन धर्म के अंदर क्राइस्ट के जीवन की 13 साल से लेकर 33 साल की आयु की हिस्ट्री नहीं है उनके पास। उनको पता ही नहीं है कि ये 20 साल वो कहां गया था। लेकिन अभी रिसेंट जो रिसर्च चल रही है उसके माध्यम से पता चला है, इंटरनेट पर काफी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वो 20 साल वो भारत भ्रमण पर था और भारत के अंदर कहां कहां गया वो सारा उसका मैप भी दिखाया हुआ है। और उस समय बताया जाता कि भारत भ्रमण पर जब वो था तो कई ऋषि मुनियों से मिलना हुआ उसका, और जब उन ऋषि मुनियों से चर्चा करते थे, ज्ञान की चर्चा करते थे, तो सभी ने उसके साथ गीता की चर्चा की और गीता के ज्ञान से वो इतना प्रभावित हो गया कि उसको लगा कि इतना ऊंचा ज्ञान मुझे अपने समाज वालों को जाकर के देना चाहिए, तो भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, इतना ऊंचा ज्ञान है, ये जाकर मुझे अपने समाज वालों से बांटना चाहिए। इसलिए 33 साल की आयु में जब वो वापस गए और जाकर के उसने वहां पर अपने समाज वालों को ये ज्ञान सुनाना शुरू किया और अपने जीवन की तुलना श्री कृष्ण के साथ उसने कहीं कहीं श्री कृष्ण की भी बातें सुनी उसने, और उस जीवन कहानी से भी बहुत प्रभावित हो गया श्री कृष्ण की जीवन कहानी से, और उसको कई सिमिलैरिटीज नजर आई खुद के जीवन की और कृष्ण के जीवन की। कहा जाता कि कृष्ण का जन्म जब हुआ उस समय भी सारे बच्चों को कंस ने मरवा दिया था, तो जीसस का जन्म जब हुआ उस समय भी वहां के राजा ने सारे बच्चों को मरवा दिया था। पहली सिमिलैरिटी। उसके बाद कहा से कृष्ण का बचपन गोकुल में गायों के बीच में हुआ, तो जीसस ने अपने जीवन को देखा कि मेरा बचपन भी एक मेंजर में भेड़ बकरियों के बीच में हुआ। दूसरी सिमिलैरिटी। तीसरी सिमिलैरिटी उसको महसूस हुई कि श्री कृष्ण ने भी बचपन में अकासुर बकासुर ऐसे कई राक्षसों को मारा और ऐसे चमत्कारिक कार्य किए, तो जीसस के बचपन में भी कई चमत्कारिक कार्य हुए। तीसरी सिमिलैरिटी। इस तरह से एक एक बात को वो कंपेयर कर रहा था अपने जीवन से और उसको महसूस हुआ कि मेरे जीवन और श्री कृष्ण के जीवन में तो बहुत सारी समानताएं हैं। जब उसको उसने वहां के लोगों को जाकर के सुनाया कि मैं आपको कृष्ण की जीवन कहानी बताता। अब जैसे भारत के अंदर श्री कृष्ण का जो नाम है हर स्टेट में अलग अलग रीति से प्रोनाउंस होने लगा, किसी ने कृष्ण कहा, किसी ने कृष्ण कहा, किसी ने किशन कहा, किसी ने कन्हैया कहा, है ना। हर स्टेट में अलग अलग रीति से उसका प्रोनाउंसिएशन होने लगता है। ठीक इसी तरह जब उसने कहा मैं कृष्ण की कहानी सुनाता हूं, तो लोगों को लगा जब उनको प्रोनाउंस करना नहीं आया कृष्ण, तब उन्होंने कहा क्रिस्त की कहानी सुनाता है, क्रिस्त की कहानी। और वहां से वो कहा कि ये अपने आप को समझता है कि उसके जीवन और कृष्ण की जीवन यानी क्रिस्त की जीवन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, तो कहा कि यीशु जो है अपने आप को क्रिस्त कह रहा है, यीशु क्रिस्त तब से हुआ। और फिर जब उसने कहा मैं गीता ज्ञान आपको सुनाता हूं, और गीता ज्ञान को उसने कहा कि कृष्ण नीति में आपको बताता हूं कि कृष्ण नीति क्या रही, वहां के लोगों को जब बोलना नहीं आया तब उन्होंने कहा क्रिश्चियनिटी, कृष्ण नीति से ही क्रिश्चियनिटी हो गई। तो कहा ये क्रिस्त कहता है अपने आप को और क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहा है। जब वहां के धर्म के ठेकेदारों को पता चला कि ये कोई भारत की बातें आकर क्रिश्चियनिटी सुना रहा है यहां पर, तो वहां के धर्म के ठेकेदारों को लगा ये अगर सारे लोग उसके अनुयायी बन गए तो हमारा क्या होगा। इसलिए वहां के राजा को जाकर कहा कि ये दूसरे धर्म का प्रचार कर रहा है यहां पर, इसको सजा मिलनी चाहिए और उसको मौत की सजा फरमा दो। वहां के राजा को लगा ऐसी क्या बात सुनाता है। उसने कुछ लोगों से पूछताछ की तो लोगों ने कहा बहुत अच्छी बातें सुनाता है कि जीवन के संघर्ष में कैसे विजयी होना चाहिए, जीवन जीने की कला सिखाता है, क्रिश्चियनिटी की बातें सुनाता है। वहां के राजा भी बहुत प्रभावित हुए और फिर उन्होंने यीशु को बुलाया और कहा जीसस को कि मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छी बातें सुनाते हो, जीवन उपयोगी बातें सुना रहे हो, लेकिन क्योंकि मुझे ये फरमान मिला है अपने धर्म के बड़ों का, इसलिए मुझे सजा सुनानी पड़ेगी तुम्हें, लेकिन मैं सजा सुनाने से पहले तुमसे माफी मांगना चाहता हूं सजा के लिए। और तभी जीसस ने उसको माफ कर दिया कि हे ओ लॉर्ड प्लीज फॉरगिव देम एज दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, कि ये क्या कर रहे हैं उन्हें पता नहीं है, इसलिए उन्हें फॉरगिव कर देना क्योंकि मैं तो भगवान उवाच की बातें सुना रहा हूं। इसीलिए बाइबल में आपको वही बातें मिलेगी जो गीता में है। युद्ध का वर्णन होली वॉर के रूप में वहां दर्शाया गया है, पांडव और कौरव को डेविल्स के रूप में और अच्छे लोगों के रीति से दर्शाया गया है कि अच्छे लोग और डेविल्स कैसे होते हैं, वही बातें आपको इसमें सुनने को मिलेगी। कहीं बातें सिमिलर आपको बाइबल के अंदर भी मिलेगी। लेकिन जब उसको सजा फरमाई गई क्रॉस पर चढ़ने के लिए उसको कहा गया, तब कहा जाता है कि जब उसको क्रॉस पर चढ़ाने के लिए ले गए उसके साथ उसके दो अनुयायी को भी क्रॉस पर चढ़ाया गया, लेकिन उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन क्राइस्ट जीसस को जब क्रॉस पर चढ़ाया गया वो जिंदा रहे। कहा जाता है कि जब क्रॉस पर चढ़ाने के बाद लोग चले गए और शाम के समय जब उसकी मां वहां आती है और उसकी मां ने देखा कि वो जिंदा है, तब उसने कुछ और लोगों को बुलाया कि वो जिंदा है, तब कहा जाता कि जीसस ने कहा मुझे इस क्रॉस से नीचे उतारो, अलग करो। क्रॉस से उसको अलग किया गया, वापस क्रॉस को उसी स्थान पर रख दिया गया और वहां से उसको ले गए गुफा में, और गुफा में ले जाने के बाद उस घाव को भरने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके घाव को भरा गया। काफी समय लगा भरने में। एक सप्ताह के बाद जब वहां के लोगों ने सोचा कि अब तक तो चील कौवे भी खा गए होंगे, हड्डियां लटक रही होंगी, देख करके आते हैं और तब देखा कि दो हड्डियां तो लटक रही थी लेकिन बीच वाले क्रॉस में शरीर भी नहीं था, हड्डियां भी नहीं थे। तभी उन्होंने सोचा कि ये शरीर सहित हेवन में चला गया। कहा जाता है कि 90 दिनों तक उसका इलाज चलता रहा जड़ी बूटियों के माध्यम से, और 90 दिनों में उसके घाव जब भर गए, उसके बाद जीसस ने कहा कि अब मेरा पीछा नहीं करना, मैं वापस भारत जाता हूं। और वो वापस भारत में आए और भारत में कई स्थानों पर घूमते हुए गीता का अध्ययन करते हुए, कहा जाता कि 93 इयर्स की आयु तक जिंदा रहे और लास्ट में श्रीनगर में उन्होंने शरीर छोड़ा। श्रीनगर में जो उनकी कब्र प्राप्त हुई है, जिसके ऊपर सारी लिखत है, जिसमें वो घावों का वर्णन है कि वो किसकी कब्र है, वो घावों का वर्णन, तो वहां पर यही माना जाता है कि वो जीसस की कब्र थी। 93 इयर्स की एज में उसने शरीर छोड़ा, जो अभी सारी रिसर्च हो रही है। हाँ, कुछ लोग इस बात को नहीं भी स्वीकार करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इस बात के लिए, स्वीकार करने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। भावार्थ ये कि उसके बाद जैसे ही देखा कि बीच का क्रॉस खाली है, तब वहां के धर्म के ठेकेदारों को महसूस होने लगा कि कहीं हमने गलती तो नहीं किया, कि ईश्वर के दूत को हमने सजा दे दिया हो, अब उस सजा का प्रायश्चित कैसे करें। तो उन्होंने उस समय वहां के लोगों को बुलाकर कहा कि उन्होंने जो शिक्षाएं दी आपको वो आप लिखत में दो। और वो सारे लोगों की शिक्षाओं को, लिखत जो मिली उनको इकट्ठा करके, उसमें से 24 लोगों की जो मुख्य बातें थी लिखत के रूप में, उसको इकट्ठा करके उसका बाइबल बनाया गया। इसलिए बाइबल में वही बातें मिलेगी जो गीता में है, लेकिन अलग अलग लोगों ने, अलग अलग उसके अनुयायी ने लिखी हुई बातें, इसलिए 24 लोगों की लिखत को बाइबल कहा गया है। भावार्थ ये कि वही बातें तभी कही गई कि गीता के अंदर जो है वही बाइबल के, तभी कहा गीता सभी धर्म शास्त्र के मां बाप है। इसी तरह कई लोगों को, कई धर्म के लोगों को गीता की बातों में ये युद्ध की बातें पसंद नहीं आई, जैसे जैन धर्म। जैन धर्म भी तो हिंदू धर्म से ही निकला हुआ है। तो कहा जाता है कि जब जैन धर्म लोगों को ये हिंसक बातें पसंद नहीं आई, युद्ध की बातें पसंद नहीं आई, कि ये शायद लोगों की मेंटालिटी के अंदर कहीं हिंसक युद्ध में के लिए प्रेरित न कर दे, इसलिए उन्होंने गीता से वो युद्ध की बातें सारी निकाल करके ब्रह्मचर्य, नष्ट मोहा, अपरिग्रह, ये सारी बातों को इकट्ठा कर करके उनका धर्म पुस्तक बना दिया कि इसी पर चलो, इसी का ध्यान लगाओ। इसीलिए महावीर स्वामी ने भी ध्यान लगाए, 24 तीर्थंकरों ने ध्यान लगाया, वो ध्यान योग जो सारा गीता में सिखाया गया है, छठा अध्याय पूरा ध्यान योग की बातें हैं। इसी तरह महात्मा बुद्ध को भी लगा कि कहीं ये हिंसक बातें जो है, मतलब युद्ध की बातें हिंसक प्रवृत्ति में परिवर्तित न हो जाए, तो उन्होंने भी युद्ध की बातें निकाल करके उसमें दया, प्रेम आदि जो वैल्यूज की बातें लिखी है, उसी को ही उठा करके उसी का धर्म पद बनाया गया। भावार्थ ये है, सभी धर्म का ओरिजिन गीता है, इसीलिए गीता माँ कहा गया है ना? तो सभी शास्त्र की शिरोमणि। और इसीलिए दूसरे अध्याय में ही पहला विधि विधान जो युद्ध के लिए बताया गया है, भगवान ने जो कहा, सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। अब जो व्यक्ति ये कहता है सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान सुख दुख चीजों से मिलता है ना, भौतिकता से मिलता है, सर्दी गर्मी प्रकृति से प्राप्त होती है, या कभी सर्दी है कभी गर्मी है, ये प्रकृति का खेल है, और मान अपमान मनुष्य से मिलता है। तो चाहे भौतिक साधन हो, प्रकृति हो या मनुष्य हो, किसी से भी जो कुछ आपको आपके सामने आए उसी को सहन करना ये एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। और यहां पर अर्जुन को भगवान संबोधित करते हैं भारत, भारत माना कोई एक अर्जुन की बात नहीं है, लेकिन हर भारतवासी के लिए ये कही गई है कि जब सहन करने की बात जब कह रहा है तो युद्ध कैसे करेंगे, अगर सहन करने लगेंगे तो युद्ध कैसे, दोनों एक दूसरे से विपरीत है। तो पहला युद्ध का विधि विधान बताया सहन करना, क्योंकि सहन करने से व्यक्ति के अंदर शक्तियां बढ़ती है, शक्ति का संचार होने लगता है। सहन शक्ति ये कोई कमजोरी नहीं है, सहन शक्ति ये अनेक शक्तियों को हासिल करने का एक सोर्स है। इसीलिए भगवान ने पहला विधान यही बताया कि प्रैक्टिकल लाइफ में जहां संघर्ष आता है, चाहे वो भौतिक साधनों से हो, प्रकृति से हो या मनुष्य से हो, तीनों को जब सहन करता है यही एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। विषयों में चित्त वृत्तियां उसी प्रकार विषय आकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता है। जल को कढ़ाई में डालो तो वैसा रूप ले लेगा, मटके में डालो तो वैसा रूप, तो जैसे जल अपना आकार बना लेता है इसी तरह मनुष्य की चित्त वृत्तियां जिस तरह से विषय उसके सामने आते हैं उस विषयों के अनुरूप होकर के उसकी चित्तवृत्तियां विषय आकार बन जाती है। विषय यहां मतलब विषय है कोई सब्जेक्ट की खाली बात नहीं है, लेकिन उस सब्जेक्ट के अंदर विकृति की बात है। इसीलिए मनुष्य जब भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है तो क्या कहते, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, विषय विकार, क्योंकि जो विषय में विकृतियां समाई हुई है तो मनुष्य के चित्त वृत्तियों को विषय आकार बना देती है। और फिर कहा यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, क्षेत्र यानी ये जीवन, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ आत्मा के बीच का संघर्ष है जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा शमन कर परमात्मा में चित्त वृत्ति को स्थित करना है, क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाला धीर पुरुष इंद्रिय और विषयों के संयोग व्यथित नहीं कर पाते हैं और वह अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य बन जाता है। तो ये पहला युद्ध का विधि विधान है, यही बताता है कि कोई हिंसक युद्ध नहीं है, अहिंसक युद्ध है, जीवन का युद्ध जो जीवन का संघर्ष है उसको कैसे जीतना चाहिए उसका विधान भगवान ने बताया कि उसमें पहला सहन करना सीखो और परमात्मा की याद में अपने चित्त वृत्तियों को एकाग्र करो। अध्याय 3 में भी ये बात बहुत स्पष्ट कर देता है भगवान के, हे अर्जुन अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके ध्यानस्थ होकर कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा ममता और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये संघर्ष जो करना है आशा ममता और संताप रहित होकर के संघर्ष कर। वास्तव में जब ध्यान करने बैठते हैं तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। जब ध्यान में बैठते हैं तो अक्सर लोगों की कंप्लेन क्या होती है, ध्यान में मन लगता नहीं। आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि ध्यान में बैठते हैं और मन सारी दुनिया चक्कर खा के आ जाता है, एक सेकंड के अंदर कहां से कहां लंदन अमेरिका पता नहीं कहां कहां घूम के आ जाता है ना, कितना संघर्ष करना पड़ता है। अब मन जाता कहां है, कभी उसका पीछा करके देखा जाता कहां है। ये देखा गया है कि मन हमेशा कोई न कोई इंद्रियों की चंचलता के पीछे ही जाता है। आज मान लो किसी से बात करते करते कोई बात मुख से निकल गई, निकल गई तब स्वाभाविक रीति से निकल गई, ख्याल भी नहीं चला। फिर जब कर्म में बिजी हो जाते हैं तो भी ख्याल नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही शांत चित होकर ध्यान में बैठेंगे ना, भगवान को याद करने बैठेंगे, उसी समय सारी बात याद आएगी। अरे फलाने सामने ये बात तो निकल गई, लेकिन अगर उसने ये बात उसको सुना दिया तो क्या होगा, उसने फिर क्या कैसे रिएक्ट किया, तो फिर उसको मैं कैसे जवाब दूंगा, तो मन चला गया। कहां गया? ये मुख ने जो चंचलता की उसके पीछे गया। कानों द्वारा फालतू बातें सुन लेते हैं, जब सुनते समय स्वाभाविक रीति से सुन लेते हैं, ख्याल नहीं चलता। कर्म में बिजी है तब भी ख्याल नहीं चलता, लेकिन जैसे ही शांत चित होकर के भगवान को याद करने बैठो, उसी समय सारी बात याद आती है। उसने मुझे ये बात जो कही है, आखिर उसका मतलब क्या था, उसका भाव क्या था, सारा भाव मतलब निकालना आरंभ करते हैं और मन चला गया। कहां गया? कहां गया? कानों की चंचलता के पीछे गया। ये कभी कोई आंखों से देख लेते हैं तो क्या कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं गलत हो ही नहीं सकता, मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे सकती है। और फिर सारा जो विचार चलना शुरू हो जाता, मन चला गया। कहां गया? आंखों ने जो चंचलता की उसके पीछे गया। तो कोई न कोई इंद्रियों की चंचलता के पीछे ही मन जाता है। तो इसीलिए कहा, जब ध्यान में बैठते तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। और काम क्रोध राग द्वेष आशा तृष्णा आदि विकार बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करते हैं। ये तीसरे अध्याय में दूसरा विधान भगवान बताते हैं उसको युद्ध का, कि कौन से आक्रमण की बात है, कोई व्यक्ति की आक्रमण की बात नहीं है। काम क्रोध राग द्वेष आशा तृष्णा आदि विकार बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करते हैं। इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना और ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। ध्यान में एकाग्र होना, इन सबको उसके बावजूद भी अटेंशन में न ला करके कॉन्सेंट्रेशन जब करते हैं, यही तो युद्ध है। जो दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा के साथ इस युद्ध में रत रहता है, वह कर्मों के बंधन से छूट जाता है। तो कर्म बंधन न बंधे जीवन के अंदर, उससे छूटने की विधि बताई है भगवान ने, और वो युद्ध करने के लिए कहा है। और फिर अर्जुन का एक महत्वपूर्ण सवाल चौथे अध्याय में, कि क्या यह उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन करने के लिए आप सबकी तरह पैदा होते हो? अब अर्जुन ये सवाल क्यों पूछेगा अगर उसको मालूम है कैसे कृष्ण ही भगवान है तो क्या पूछता है? क्या यह उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन करने हेतु आप सबकी तरह पैदा होते हो? तो भगवान कहते हैं, नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जाता है, मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, शाश्वत हूं, मैं विनाश रहित पुनर्जन्म रहित प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। मेरे स्वरूप का जन्म पिंड रूप में यानी किसी माता के गर्भ से नहीं होता है। योग साधना द्वारा अपनी त्रिगुणामय प्रकृति को स्ववश करके मैं प्रकट होता हूं। यहां स्पष्ट भगवान ने कह दिया कि मेरा जन्म मनुष्य सदृश नहीं है, इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है, मैं अजन्मा हूं। इनफैक्ट मैं तुम लोगों के जैसे जन्म लेता ही नहीं हूं, अव्यक्त हूं, मुझे कोई अपनी व्यक्त आकृति नहीं है। अब अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, क्योंकि वो तो अब तक श्री कृष्ण को ही देख रहा था, उसी को समझ रहा था सब कुछ। तो जब भगवान ने ये कहा तो ये किसकी बात हो सकती है? जरूर वो निराकार परमपिता परमात्मा, जिसको आज हमने सुबह में देखा, अजन्मा स्वरूप महाकालेश्वर, जिसको काल कभी नहीं खा सकता है, वही महाकालेश्वर है जो जन्म मृत्यु के चक्र से परे हैं, अव्यक्त पुरुष है। ये उसी पुरुष की बात की गई है। तब अर्जुन का दूसरा सवाल, फिर आप किस परिस्थिति में और कब प्रकट होते हैं? है ना, भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब परम धर्म और परमात्मा के प्रति हृदय ग्लानि से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब तब, जब जब तब तब, हर युग में आता हूं ये तो कहा ही नहीं, जब 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 अधर्म या परम धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति हृदय ग्लानि से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूं। यदा यदा, जब जब, तब तब। अगर भगवान गीता का ज्ञान द्वापर युग में देता था और अधर्म का नाश कर दिया और सनातन धर्म की, सत धर्म की स्थापना कर दी, तो द्वापर के बाद तो कलयुग आया, तो क्या गीता के ज्ञान से घोर अधर्म के युग की स्थापना हुई? क्या कहेंगे? तो गीता का ज्ञान कब दिया जाना चाहिए, द्वापर के अंत में या कलयुग के अंत में, जब अधर्म का नाश करके सत धर्म यानी सतयुग की स्थापना की हो? कब दिया होना चाहिए, द्वापर के अंत में या कलयुग के अंत में? कलयुग के अंत में। लेकिन फिर ये मिस्टेक कैसे हो गई? तो मुझे वो बात याद आती है, शायद आपने बचपन में ये खेल जरूर किया होगा हर एक ने, क्योंकि कई स्कूलों में आज भी कराते हैं, और खास करके हम जब ट्रेनिंग करते हैं कम्युनिकेशन गैप की, कम्युनिकेशन गैप्स कैसे क्रिएट होते हैं, उसमें भी हम अक्सर बताते हैं कि मानो 20 लोग को या 50 लोगों को बुलाया जाए एक स्टेज पर। बचपन में क्लास के सारे स्टूडेंट को बुलाते थे, गोल में खड़ा कर देते थे, और एक स्टूडेंट को बुला करके टीचर उसके कान में कहानी सुनाती है, और जब वो कहानी सुनाती है, एक ही बार वो कहानी सुनानी होती है, और वो बच्चा सारी कहानी को मेमोराइज करके आके दूसरे बच्चे के कान में सुनाता है, दूसरा बच्चा तीसरे बच्चे के कान में सुनाता है, तीसरा बच्चा चौथे बच्चों के कान में सुनाता है, जब 50वें बच्चे तक आती है तो कहानी वही रहेगी या बदली हो जाएगी? गीता ज्ञान कहा गया और कितने साल हो गया, कितनी बार उसका इंटरप्रिटेशन होता गया, आज जो हमारे सामने है वो वही होगी या उसमें भी कुछ परिवर्तन हुआ होगा? कुछ तो डिस्टॉर्शन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? अवश्य, तोड़ मोड़ जोड़ तो होता ही रहता है ना, कुछ एडिशन होता है, कुछ निकाल देते हैं, तो इसीलिए कई बार मैं जब ये गीता का रिसर्च कर रही थी, मुझे 3 साल लगा, और मैंने 20 गीता को लिया था, 20 गीता को एज ए स्टडी के रूप में रखा था, सारे टेबल पर खोल करके बैठ जाती थी, एक ही श्लोक, एक में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सब में पढ़ती थी एक ही श्लोक और उसका इंटरप्रिटेशन। आप मानेंगे नहीं, मेरे आश्चर्य ये था, एक ही श्लोक लेकिन वो 20ों ने अपना अपना मतलब निकाला है, 20ों का इंटरप्रिटेशन अपना अपना है। आप कभी ट्रायल करना है तो करके देख लीजिए, एक ही श्लोक को लेकर के आप 10-12 गीता को भी इकट्ठा करो, हरेक का इंटरप्रिटेशन अपना अपना है। माना जो मैंने कहा कि एक इतनी ऊंची कॉन्शियसनेस लेवल की जो बातें थी, जिसको लिखने के लिए स्वयं बुद्धि के देवता, और वो बात मुझे याद आती है कि जब गणेश जी लिखने आए तो उन्होंने एक शर्त रखी थी, पता है ना क्या शर्त थी? गणेश जी ने शर्त रखी थी कि मैं इतना फास्ट राइटर हूं, जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा, और ये बात सुन करके वेद व्यास जी के पास कोई अल्टरनेट नहीं था तो उसने शर्त को मान्य कर लिया। लेकिन उसने भी अपनी एक शर्त रखी, मेरी भी एक शर्त है। और वेद व्यास जी की शर्त क्या थी पता है? वेद व्यास जी ने अपनी शर्त रखी और कहा कि ठीक है, जहां मैं रुकूं आप उठ के चले जाना, मैं निरंतर बोलता रहूंगा, लेकिन मैं जो कुछ उस समाधि अवस्था में बोलूं आप हर बात को समझ के लिखेंगे, बिना समझे नहीं। यू नो इट शुड मेक सेंस, इट शुड मेक सेंस जो आप लिख रहे हैं, इट शुड मेक सेंस। और जैसे ही पहला श्लोक उच्चारण किया कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, जैसे ही भगवान संजय को ये पूछा गया तो उस समय कहा जाता कि गणेश जी को भी रुकना पड़ा कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र पहला एडजेक्टिव क्यों लगाया गया, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र क्यों नहीं कहा गया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्यों कहा गया। तो वो समझने के लिए गणेश जी बुद्धि के देवता को भी रुकना पड़ा। ऐसे कई श्लोक हैं जिसको समझने के लिए गणेश जी को स्वयं रुकना पड़ता था। इतनी हाई कॉन्शियसनेस या इतनी इंटेलेक्चुअल लेवल की बातें हो, उसके बाद कितने लोगों ने इंटरप्रिटेशन किया और आज जो हमारे सामने है वो वही भाव से होगी या बदली हो गई होगी, क्या कहेंगे, है ना? कई एडिशन हुए, कई करेक्शंस हो गए, कई सब्सट्रैक्शन भी हो गए, है ना? कई तरह से गीता को तोड़ मरोड़ दिया गया है। मेरी एक महात्मा जी से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात सुनाई कि वेद व्यास जी इतने इंटेलेक्चुअल थे कि उन्होंने जो श्लोक लिखाए वो सारी बात को समराइज करके दो लाइंस में उसने लिखा दिए, दो दो लाइन के उसने श्लोक्स बनाए। लेकिन उसके बाद जो लोगों ने इंटरप्रिटेशन किया और कुछ बातें गुम हो गई या समझ में नहीं आई, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उनको और श्लोक्स को एडिशन करना पड़ा। तो जो एडिशनल श्लोक्स है, क्योंकि वो लोग इतने इंटेलेक्चुअल नहीं थे जो दो लाइन में वो श्लोक को समा सके, इसलिए उन्होंने वो बात को समाने के लिए चार श्लोक बनाए या छह श्लोक बनाए। तो जो चार श्लोक और छह श्लोक है वो एडिशनल श्लोक्स है, क्योंकि वेद व्यास जी तो इतने इंटेलेक्चुअल थे सिर्फ दो लाइनों में समा देते थे, लेकिन बाद के लोग इतने इंटेलेक्चुअल नहीं थे, इसलिए उनको चार लाइन में उसको लगाना पड़ा, छह लाइन में लगाना पड़ा, कहीं कहीं आठ लाइन का भी आपको मिलेगा। वो सारे श्लोक्स एडिशनल श्लोक्स है, इसीलिए कहीं कहीं जो तथ्य है वो तथ्य गुम हो गया, उसी विस्तार में वो तथ्य गुम हो गया। और वेद व्यास जी, उनका नाम ही उसका एक्सप्लेनेशन है कि वेद व्यास यानी वेदों का ज्ञान उसके पास था और उसको समराइज करना था, जो गीता बनानी थी उनको, तो इसीलिए। लेकिन कहीं कहीं व्यास माना विस्तार, व्यास का अर्थ होता है विस्तार, कहीं कहीं वो भी विस्तार में चले गए, इसलिए वो सत्यता जो उसमें थी वो लुप्त होती गई। और उसके बाद मनुष्य ने और एडिशन कर दिया तो और भी लुप्त कर दिया। तो ओरिजिनल जो मैसेज है जो तीन घंटे में सुनाई गई थी, आज वही गीता को अगर तीन दिन लग जाता है तब भी पूरी नहीं कर पाते, तो कितना एडिशन हुआ होगा, सोचने की बात है। इसीलिए भगवान ने कहा कि जब कलयुग माना घोर अधर्म का युग है, तब मैं आकर अधर्म का नाश करना और सत धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अपने स्वरूप को रचता हूं और स्वयं अवतरित होता हूं। यहां अवतरण का अभिप्राय पुनर्जन्म लेना नहीं है, अपितु पुनः अपने स्वरूप को प्रकट करना है, क्योंकि वो जन्म नहीं लेता है। और इसीलिए जब पुनः अपने स्वरूप को प्रकट करता है तो द्वापर में नहीं, कलयुग अंत की बात थी। और इसी तरह कहा परित्राणायाम साधु नाम, यानी परम साध्य परमात्मा के समीप ले जाने वाले विवेक वैराग्य और दैवी संस्कारों को निर्विघ्न प्रवाहित करने तथा दुष्कृत्य के कारक काम क्रोध राग द्वेष इत्यादि विकारों का पूर्ण विनाश करने के लिए और परम धर्म सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं ऐसे युगे युगे आता हूँ, प्रकट होता हूँ। ऐसे युगे युगे, हर युग की तो बात ही नहीं है, ऐसे युगे युगे जब दुष्कृत्य के कारक काम क्रोध राग द्वेष पूर्ण रूप में हो, ऐसे युगे युगे आता है ना। युग का तात्पर्य यहाँ हर युग की बात नहीं है, सत्ययुग त्रेता युग नहीं है, लेकिन जब तामस गुण भरपूर हो जाते हैं, चारों ओर वैर विरोध हो जाता है, जब तामसी गुण ही कार्य करता है और मनुष्य में आलस्य निद्रा प्रमाद का बाहुल्य हो जाता है, मनुष्य कर्तव्य को जानते हुए उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, निषिद्ध कर्म को जानते हुए उससे निवृत्त नहीं हो सकता है, इस प्रकार युग धर्म के उतार चढ़ाव पर परमात्मा प्रकट होते हैं, उस समय पर आते हैं, वह यही समय है। इसलिए कहा कलयुग अंत का जो समय है, इसी समय में उसको आना है और तब आकर के परिवर्तन सनातन धर्म की स्थापना। इसलिए दुर्योधन ने क्या कहा था भगवान को, यही कहा था, हे प्रभु धर्म क्या है मैं जानता हूँ, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूँ, परंतु धर्म पर चलने की शक्ति मुझ में नहीं है और अधर्म को छोड़ने की ताकत नहीं है। आज का मनुष्य कौन ऐसा है जो धर्म क्या कहता है नहीं जानता है, अधर्म किसको कहते हैं नहीं जानता है, सब कुछ जानते, लेकिन धर्म पर चलने की शक्ति कितनों में है, अधर्म को छोड़ने की ताकत कितनों में है? वही दुर्योधन है कि नहीं है, कितने दुर्योधन हो गए। इसीलिए अधर्म बढ़ता गया, जहां इतने दुर्योधन हो तो अधर्म नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, है ना। और तब फिर आगे भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, मेरा जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक है, जो इन चरम चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता है। तब अर्जुन का पुनः सवाल, तो कौन उसे देख सकता है और समझ सकता है? तब भगवान कहते, केवल तत्वदर्शी, यानी जो ज्ञान और तपस्या द्वारा पवित्र बनते हैं और वितराग भय और क्रोध से मुक्त होते हैं, वे मेरे इस जन्म और कर्म को देख सकता, अंतर चक्षु से देखने की मांग, और मेरा साक्षात्कार कर सकता है। आत्म साक्षात्कार करने वाला ही इस अवीर्य भाव को समझ पाता है कि परमात्मा किस वितरागी में अवतरित होते हैं, अवतरण होता है तो किस वितरागी में, अति साधारण रूप में अवतरित होते हैं। और यही बात सातवें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, मुझे जानने के लिए हजारों में कोई विरला ही प्रयत्न करता है और उसमें भी कोई विरला ही जानता है, जो अनन्य भाव से मेरे आश्रित होकर मेरे साथ योग लगाता है, वह सरलता से मेरे संपूर्ण रूप को जान लेता है और माया को पार कर जाता है। कोटों में कोई कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ तो अति साधारण रूप में प्रकट होता है, क्योंकि अधर्म का नाश बहुत बड़ा कार्य है, अधर्म का नाश और सनातन धर्म की स्थापना करनी है तो कितना बड़ा कार्य है। अगर दिव्य स्वरूप में आए तो कौन उसको कार्य करने देंगे, है ना। इसीलिए कहा हजारों में कोई विरला प्रयत्न करता है और उसमें भी कोई विरला जान पाता है और माया को पार करके मुझे प्राप्त कर लेता, क्योंकि बहुत बड़ी बाधा क्या है बीच में, माया को पार करना पड़ता है जो सभी नहीं कर पाते। इसीलिए कोटों में कोई कोई में भी कोई विरला ही जान करके उसको प्राप्त कर लेते हैं। फिर भगवान ने कहा, जिनकी बुद्धि इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कहां जाते हैं? देवताओं की शरण में। वो मेरे पास नहीं आते, हजारों में कोई कोई में भी कोई ही मेरे पास आता है माया को पार करके। लेकिन जो माया में फंस जाते हैं, जिनकी बुद्धि इच्छाओं द्वारा मारी गई वे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कहां जाएंगे? देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव अनुसार पूजा के विधि विधान का पालन करते हुए अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं। पूजा के विधि विधान भी हरेक ने अपने अपने बनाए, किसी ने सात्विक स्वरूप से बनाए, किसी ने राजसिक और किसी का तामसिक। तामसिक पूजा विधि विधान भी होता है, जो सात्विक है वह जैसे बिना स्नान पानी किए नहीं करेंगे, स्नान पानी करके एकदम फ्रेश हो करके बड़ी शुद्धि के साथ वो पूजा के विधि विधान को, ये सात्विक पूजा है जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, है ना, सात्विक पूजा है। लेकिन तामसिक पूजा कैसी है? फिर उसके बाद इच्छाओं के आधार पर जो करते हैं उसमें कभी नाया नहीं नाया, दिया बत्ती कर दो, अगरबत्ती जला दो, घुमा दो, फिर बाद में स्नान करेंगे, ये राजसिक है। और तामसिक सब खा पी लेने के बाद लास्ट में याद आ गया तो दिया बत्ती कर लिया, या तो याद नहीं आया तो बाहर निकलने के बाद रास्ते में मंदिर देखा। कुछ मैंने नौजवानों को देखा, यहाँ बीच में आप माउंट चढ़ेंगे तो हनुमान का मंदिर आता है, तो वो लड़के लोग साइकिल पर थे, तो जैसे ही वो हनुमान जी के मंदिर से क्रॉस हुए तो साइकिल 2 मिनट खड़ी रखी और बाहर से हाय हनु और चल दिए। अब इसको कौन सी पूजा कहेंगे? ये कौन सी पूजा कहेंगे? आज की पूजा का विधि विधान यही है। तो इसीलिए कहा, हरेक अपने अपने स्वभाव अनुसार, जिसका स्वभाव सात्विक है उसकी पूजा भी वैसी, राजसिक स्वभाव है, तामसिक स्वभाव है तो उसका पूजा का विधि विधान भी वैसे ही होता है, और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो करते हैं। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारी प्राप्ति मेरे द्वारा ही प्रदत्त है, मन्नते मानते हैं। और अगर उनको प्राप्ति कराते हैं तो वो देवताएं तो नहीं कराते हैं। वास्तविकता तो यह है भगवान वाच कि ये सारी प्राप्ति मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। अल्पज्ञ बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं तो प्राप्त होने वाला फल भी सीमित और क्षणिक होता है, है ना? प्राप्त होने, ये गीता के महावाक्य हैं, हमारे तो वाक्य नहीं है, गीता के महावाक्य है कि प्राप्त होने वाला फल भी क्षणिक और सीमित होता है, है ना? तो इसीलिए देवताओं की पूजा क्यों आरंभ हुई दुनिया के अंदर? मनुष्य को भगवान के पास जाने के लिए माया को क्रॉस करना, वो हिम्मत नहीं थी, तो हिम्मत नहीं थी तो कैसे करे? तो फिर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए देवताओं की शरण, देवताओं के मंदिर बना दिए और उनकी शरण में जाने लगे। लेकिन वो कहा ना, इनडायरेक्ट वाया वाया जाने लगे, तो वाया वाया में प्राप्ति भी कितनी होंगी? वैसी होंगी, क्षणिक और सीमित, यही प्राप्ति है। तो फिर भगवान को पुनः प्रश्न पूछता, परमात्मा को मनुष्य क्यों नहीं जान पाते हैं? तो भगवान कहते, संसार के संपूर्ण प्राणी इच्छा और द्वेष, अर्थात राग द्वेषादि द्वंद से उत्पन्न मोह से ग्रस्त है, इसलिए वो मुझे नहीं जान पाते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त पुरुष को, व्यक्त भाव को प्राप्त किया हुआ मान, यहां अर्जुन को भी संकेत दे रहा है भगवान के, बुद्धिहीन मनुष्य, क्योंकि अर्जुन भी उसको व्यक्त भाव में समझ रहा था, व्यक्त भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं वो मुझ अजन्मा अविनाशी सर्वोच्च को नहीं जानते, क्योंकि मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूं। मैं इनके तीनों कालों को जानता हूं, भगवान कहते हैं जिसके तन में मैं हूँ, इसके भी तीनों कालों को मैं जानता हूँ, भूत वर्तमान भविष्य मैं जानता हूँ। अब यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण अलग है और परमात्मा अलग है। जब परमात्मा कहते हैं मैं अजन्मा अविनाशी सर्वोच्च को नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं इनके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, मैं इनके तीनों कालों को जानता हूँ। श्री कृष्ण के भी तीनों कालों को जानने वाला कौन? परमात्मा है ना। तीनों कालों को जानता हूँ कि भूत वर्तमान और भविष्य क्या है। तो आज यहाँ ही समाप्त करते हैं शाम के सत्र में, और आगे की बातें बहुत सुंदर। परमात्मा को कौन जान पाते, अर्जुन के कई सवाल है जो हम सभी के मन के सवाल भी है, उन सभी सवालों का जवाब आज मिलेगा। तो इसीलिए जो है अभी शाम के सत्र में आप सबके सामने पुनः हाजिर होंगे, इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए। बहुत सुंदर सुंदर बातें गीता में लिखी हुई है जो लुप्त हुई पड़ी है, अंदर जैसे समा गई है विस्तार में, उन सब बातों को हम छांट छांट करके निकाल करके लाए हैं आपके लिए।